3 महावीर स्वामी जीवन और सिद्धांत। जीवन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का योगदान एवं उनकी शिक्षाएं जैन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। महावीर स्वामी जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किए गए हैं, जिनके सफल नेतृत्व में प्राचीन जैन धर्म को नव जीवन मिला था। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। डॉक्टर पांडे, डॉक्टर मेहता तथा डॉक्टर जैन ने महावीर स्वामी को जैन धर्म के सुधारक के रूप में माना है। उन्होंने प्राचीन जैन धर्म के सिद्धांत में कुछ कुछ संवर्धन और परिवर्तन करके उसे पुनः नए रूप में संगठित किया और अपनी योग्यता, संगठनशीलता और पुनीत प्रतिभा के द्वारा उसकी अभूतपूर्व उन्नति की। महावीर के पूर्व पार्श्वनाथ का चातुर्याम व्यापक रूप से सामयिक धर्म के रूप में प्रचलित था, जिसको संशोधित एवं प्रतिवर्धित कर महावीर ने पंच महाव्रत रूप धर्म को प्रचलित किया। महावीर के पूर्व के तीर्थंकरों ने सामायिक संयम का उपदेश दिया था तथा केवल अपराध होने पर ही इनका अतिक्रमण करना आवश्यक बतलाया था, किंतु महावीर ने सामायिक धर्म के स्थान पर छेदोपस्थापना स्वयं निर्धारित किया और नियम के अतिक्रमण करने का उपदेश दिया। इसकी पुष्टि मूलाचार, भगवती, उत्तराध्ययन आदि आगमों तथा तत्वार्थ सूत्र की सिद्धसेन की टीका से होती है। महावीर ने अपने धर्म में ऋषभनाथ की सर्वस्व त्याग रूप अकिंचन मुनिवृत्ति, नेमिनाथ की निरहिता, नेमिनाथ की अहिंसा तथा पार्श्वनाथ के चातुर्याम रूप धर्म को स्थान दिया एवं इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। डॉक्टर हीरालाल जैन महावीर के धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पार्श्वनाथ संप्रदाय को चाउज्याम धर्म तथा वर्धमान के संप्रदाय को पंचसिक्खीय कहा गया है। पार्श्वनाथ का धर्म संतरोत्तर तथा वर्धमान महावीर का अचेलक धर्म है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के आरंभिक जीवन एवं जन्म स्थान के विषय में हमें निम्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। और साहित्यिक स्रोत दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के ग्रंथ तथा पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व हुआ था। इनकी माता त्रिशला देवी तथा पिता सिद्धार्थ थे। इनके विषय में जैन आगम से स्पष्टतः ज्ञात होता है कि वे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के संप्रदाय के अनुयायी थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ कुंडपुर के तांत्रिक नामक क्षत्रियों के गणराज्य के राजा थे और उनकी माता त्रिशला देवी लिच्छवी वंशी राजा चेतक की पुत्री अथवा एक परंपरा अनुसार उनकी बहन थी। महावीर का पैतृक गोत्र नाथ, नाद या नाथ संस्कृत का ज्ञात्री था। इसी से उन्हें बौद्ध पाली ग्रंथों में नाथ पुत्र के नाम से संबोधित किया गया है। भगवान महावीर के जन्म स्थान कुंडपुर के संबंध में पाश्चात्यकालीन जैन परंपरा में भ्रांति उत्पन्न हो गई है। दिगंबर संप्रदाय ने उनके जन्म स्थान कुंडपुर को नालंदा के समीप स्थित कुंडसपुर माना है, किंतु श्वेतांबर संप्रदाय ने मुंगेर जिले के लघुआड़ के समीप स्थित क्षत्रिकुंड को उनकी जन्मभूमि होने का सम्मान दिया है, किंतु जैन आगमों व पुराणों में उनकी जन्मभूमि के संबंध में जो वर्णन है वह उक्त दोनों स्थानों में घटित होता नहीं पाया जाता। हरिवंश पुराण एवं उत्तर पुराण से महावीर की जन्मभूमि कुंडपुर विदेह देश में ज्ञात होती है। इस मत के समर्थक के अनुसार इसी से महावीर स्वामी को विदेह पुत्र, विदेह सुकुमार आदि उपनाम दिए गए हैं। उनके कुल का गोत्र कश्यप था। उनका विवाह कौंडिन्य गोत्री राजकुमारी यशोदा के साथ हुआ था। इनसे उन्हें एक पुत्री अशोज्या उत्पन्न हुई। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने बाल्यकाल के 30 वर्ष विदेह में ही व्यतीत किया। फिर भाई से आज्ञा लेकर 13 वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की। एक शाल वृक्ष साखू का पेड़ के नीचे उन्हें कैवल्य निर्मल ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः वे अर्हत योग्य निर्ग्रंथ बंधन रहित जिन विजयी और केवलीन सर्वज्ञ कहलाए। इसके बाद वे अपने ज्ञान के प्रचार में जुटे। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार उत्तर भारत में ही किया। उत्तर प्रदेश के मल्ल, कोशल, काशी, अंग, मगध, वज्जी, बिहार, राजसून, बंगाल आदि में पैदल घूम घूमकर और शारीरिक यातना उठाकर इस धर्म का प्रचार किया। बौद्ध तथा दूसरे धर्मानुयायियों से वाद विवाद करते हुए वे 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी पहुंचे। यह स्थान अब देवरिया जनपद के कुशीनगर के समीप का आज फाजिल नगर है। यहीं इनका निर्माण भी हुआ। यह बुद्ध के समसामायिक थे, किंतु उनसे अव्यवस्था में बड़े थे। डॉक्टर हीरालाल जैन ने विदेह की प्राचीनतम सीमा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि महावीर की जन्मभूमि माने जाने वाले दोनों स्थान कुंड पूर्वक क्षत्रिय कुंड विदेह में नहीं बल्कि मगध देश की सीमा के भीतर कहीं रहा होगा। आगमों में अनेक स्थलों पर वैशाली उपाधि सहित महावीर स्वामी को उल्लिखित किया गया है। इसके आधार पर डॉक्टर हानले, जैकोबी आदि पाश्चात्य विद्वानों ने वैशाली को ही भगवान महावीर की वास्तविक जन्मभूमि माना है। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थल वैशाली स्थित वासुकुंड को बताया जाता है। पुरातात्विक आधार पर यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन वैशाली आधुनिक तिरहुत मंडल के वैशाली जनपद के वशाण नामक ग्राम के आसपास ही बसी हुई थी, जहां राजा विशाल का गढ़ नाम का स्थल अब भी विद्यमान है। जिस स्थल का उल्लेख महावीर की जन्मभूमि के संबंध में पाया जाता है तथा उसके विषय में जो वर्णित है, वे सारी बातें इसी स्थल के आसपास के क्षेत्र में उचित रूप से घटती हैं। यही समीप में आज भी गंडकी नदी बहती है, जो प्राचीन काल में बसाड़ के समीप बहती हुई बताई गई है। भगवान महावीर ने प्रव्रजित होने से पश्चात प्रथम रात्रि जिस कर्मार ग्राम में व्यतीत किया था, वह ग्राम अब यही कम्मन छपरा के नाम से प्रसिद्ध है। जिस वाणिज्य ग्राम में भगवान ने अनेक वर्ष या अपना प्रथम वर्षावास व्यतीत किया था, वही अब यहाँ का बनिया ग्राम है। प्राचीन वैशाली के समीप एक वासुकुंड नामक ग्राम है, जहाँ के निवासी परंपरा से एक स्थल को भगवान की जन्म भूमि मानते आए हैं और उसी पूज्य भाव से उस पर कभी हल नहीं चलाया गया है। उसी के समीप ही एक विशाल कुंड है, जो अब मिट्टी से भर गया है। यह खेत के रूप में जोता बोया जाता है। वैशाली की खुदाई में एक ऐसी प्राचीन मुद्रा मिली है जिसमें वैशाली नाम कुंडे का उल्लेख है। इन सब प्रमाणों के आधार पर अधिकांश विद्वानों ने इसी वासुकुंड को प्राचीन कुंडपुर या महावीर की वास्तविक जन्मभूमि स्वीकार किया है। इन प्रमाणों के आधार पर वहां के उक्त क्षेत्र को अधिग्रहित कर बिहार राज्य ने वहां महावीर का स्मारक स्थापित किया है और वहां एक अर्ध मागधी पद्यों में रचित शिलालेख द्वारा यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि यही वह स्थल है जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अतएव पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर महावीर का जन्म स्थान वैशाली के समीप स्थित वासुकुंड प्रमाणित होता है, जो जैन ग्रंथों में कुंडपुर के नाम से उल्लिखित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने पार्श्वनाथ के चातुर्याम सामयिक धर्म के स्थान पर पंच महाव्रत रूप धर्म का उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने अपने पंच महाव्रत में ऋषभनाथ का सर्वस्व त्याग रूप अकिंचन मुनिवृत्ति, नमी की निरेहता या नेमीनाथ की अहिंसा एवं पार्श्वनाथ के चातुर्याम को स्थान दिया है। महावीर के पंच महाव्रत निम्न हैं: 1. अहिंसा महाव्रत, 2. सत्य महाव्रत, 3. अस्तेय महाव्रत, 4. अपरिग्रह महाव्रत, 5. ब्रह्मचर्य महाव्रत। 1. अहिंसा महाव्रत। महावीर के पंच महाव्रतों में इसको प्रथम स्थान प्राप्त है। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म में भी अहिंसा को जैन धर्म का मूलभूत आधार माना गया है। जैन धर्म परम अहिंसावादी था। पृथ्वी काय, जल काय, अग्निकाय, वनस्पति काय और त्रास जीव चलने फिरने वाले इन छह प्रकार के जीवों के प्रति संयम पूर्ण व्यवहार की अहिंसा है। डॉक्टर पांडे का मत है कि अहिंसा की इस परिभाषा के अनुसार प्राणी मात्र के प्रति मन, वचन और कर्म से किया गया कोई असंयत आचरण हिंसा है। निश्चय ही यह बड़ी उदात्त परिभाषा है। जीवों की हिंसा न करना ही जैन धर्म में अहिंसा कहा गया है। जीव केवल गतिशील द्रव्यों में ही नहीं बल्कि वनस्पति, क्षिति, जल आदि में भी होता है। इन सभी जीवों की हिंसा करना जैन दार्शनिक विचारधारा में बुरा काम माना जाता है। इसलिए जैन सन्यासियों में नाक पर कपड़ा बांधकर चलने की 10 वैकल्पिक सूत्र परंपरा चल पड़ी। जैन अनुयायियों की इन अतिवादी क्रियाओं को देखकर ही हॉपकिंस ने कहा है, अ रिलीजन इन विच द चीप पॉइंट्स इंसिस्टेड अपॉन और दैट वन शुड डेनी गॉड, वर्शिप मैन एंड नरिश वर्मिन। हॉपकिंस। जैन धर्म की आलोचना अहिंसा की अतिवादिता को लेकर ही की गई है। जैन धर्म में अहिंसा जीवों की हिंसा मात्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसे मन, वचन और कर्म तीनों से परिपालित करने का उपदेश दिया गया है। इनका सम्यक रूप से पालन करने के लिए निम्नलिखित उपनियमों को पालन करना चाहिए। 1. ईर्या समिति। इसके अंतर्गत ऐसे मार्ग से चलने का आदेश दिया जाता है जहाँ कीट कीटाणुओं का पैर से कुचल कर हिंसा का भय न हो। 2. भाषा समिति। इसके अंतर्गत सदैव मधुर वाणी बोलने का निर्देश दिया गया है जिससे वाचित हिंसा न हो। 3. एषणा समिति। भोजन द्वारा किसी भी प्रकार की कीट कीटाणुओं की हिंसा न करने का उपदेश दिया गया है। 4. आदांग क्षेपक्षा समिति। इसके अंतर्गत भिक्षुओं को आदेश दिया गया है कि वे अपनी संपूर्ण सामग्री का उपभोग करते समय देख लें कि कहीं उनके द्वारा किसी कीट पतंग की हिंसा तो नहीं हो रही है। 4. व्युत्सर्ग समिति। इस समिति के अंतर्गत ऐसे स्थानों पर मलमूत्र त्यागने का निर्देश दिया गया है जहां किसी भी कीट कीटाणुओं की हिंसा न हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन तीर्थंकर महावीर ने किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करने का उपदेश दिया है। 2. सत्य महाव्रत। इसमें असत वचन बोलना, अनृत, असत्य, मृषा या मूढ़ वचन बोलना होता है, मूढ़ वचन छोड़ना होता है का आदेश है। असत का अर्थ जो सत अर्थात वस्तु स्थिति के अनुकूल एवं हितकारी नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अर्थात सत्य बोलो प्रिय बोलो, सत्य को इस प्रकार मत बोलो कि वह दूसरों को अप्रिय हो जाए। सत्य महाव्रत में इसी को आधार माना गया है। जैन ग्रंथों में भाषण सदा सत्य होना चाहिए और साथ में मधुर भी। इस महाव्रत के साधक को निम्नलिखित 5 उपनियमों का परिपालन करना चाहिए। 1. अनुविमभाषी। इसके अनुसार बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। 2. कोहम परिजानाति। इसके अंतर्गत निर्ग्रंथ साधुओं को क्रोध आने पर मौन रहने का आदेश दिया गया है। 3. लोभम परिजानाति। इसके अनुसार साधक को लोभ की भावना जागृत होने पर मौन रहना चाहिए। 4. भयम परिजानाति। भय उत्पन्न होने पर मौन रहना चाहिए एवं असत्य नहीं बोलना चाहिए। 5. हासम परिजानाति। हंसी मजाक में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। 3. अस्तेय महाव्रत। जैन धर्म में बिना किसी अनुमति के उसका वस्तु ग्रहण करना ही अस्तेय कहा गया है। अतएव इस धर्म में अनुमति बिना किसी अन्य की वस्तु न ग्रहण करना और न ग्रहण करने की इच्छा करने की बात कही गई है। इसके लिए निम्न 5 उपनियमों का परिपालन करना चाहिए। 1. बिना आज्ञा किसी के घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। 2. गुरु की आज्ञा बिना भिक्षा अर्जित भोजन को ग्रहण न करना चाहिए। 3. बिना अनुमति के किसी के घर में निवास नहीं करना चाहिए। 4. किसी के घर के भीतर रहते समय बिना गृह स्वामी की आज्ञा के उसके किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। 5. यदि कोई भिक्षु किसी घर में निवास कर रहा है तो उस समय भी गृह स्वामी की आज्ञा के बिना उसके घर में न रहना चाहिए। 4. अपरिग्रह महाव्रत। पंच महाव्रतों में चौथा महाव्रत अपरिग्रह महाव्रत है। विषयों के प्रति आसक्ति को ही जैन धर्म अपरिग्रह कहा गया है। अतएव जैन भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करने का उपदेश दिया गया है, क्योंकि इससे आसक्ति उत्पन्न होती है। धन्य धान्य वस्त्राभूषण सभी को यह धर्म परित्याग करने के लिए निर्देश देता है। इनके अतिरिक्त इंद्रियों के विभिन्न रूप या विषयों में भी सर्वथा अनासक्ति भाव का होना आवश्यक बताया गया है। और परिग्रह व्रत के साधक के लिए निम्न 5 उपनियमों के परिपालन करने का उपदेश दिया गया है। 1. श्रोतेन्द्रिय के विषय शब्द के प्रति अनासक्त भाव रखना। 2. चक्षुरेन्द्रिय के विषय रूप के प्रति अनासक्त भाव रखना। 3. घ्राणेन्द्रिय के विषय गंध के प्रति अनासक्त भाव रखना। 4. रसनेन्द्रिय के विषय रस के प्रति अनासक्त भाव रखना। 5. स्पर्शेन्द्रिय के विषय स्पर्श के प्रति अनासक्त भाव रखना। 5. ब्रह्मचर्य। पंच महाव्रत का अंतिम महाव्रत है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के पूर्व जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। इन्होंने ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया एवं साधकों को पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन करने का आदेश दिया। स्त्री अनुराग व काम क्रीड़ा के परित्याग का नाम अव्यभिचार या ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य की महत्ता सभी ग्रंथों में स्वीकार की गई है, किंतु जैनियों द्वारा इसे कठोरता से पालन करने के लिए कहा गया है। इसके लिए निम्न 5 उपनियमों का पालन करना आवश्यक बताया गया है। 1. किसी नारी से बात न करें। 2. किसी नारी को न देखें। 3. नारी संसर्ग का ध्यान न करें। 4. सरल एवं अल्प भोजन करें। 5. जिस घर में नारी रहती है वहाँ न रहें। ये पंच महाव्रत जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए प्रतिपादित किए गए हैं। यह सत्य है कि पंच महाव्रत का पालन कर साधक संसार के मोह बंधन एवं काम बंधन के पास से अलग हो सकता है एवं संसार के प्रति अनासक्ति उत्पन्न हो सकती है, किंतु कर्म बंधन से मुक्ति पाने के अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार कर्म फल संग्रहित न करे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न का अनुशीलन और अभ्यास आवश्यक बताया गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जैन साधक के लिए त्रिरत्न का अभ्यास आवश्यक बतलाया है। पूर्व जन्म के कर्म फल को नष्ट करने तथा इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्नों के पालन करने का आदेश दिया गया है। ये त्रिरत्न हैं: 1. सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन। 2. सम्यक ज्ञान या सम्यक ज्ञान। 3. सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। 1. सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन। सत्य में विश्वास सम्यक श्रद्धा कहा गया है। जैन दर्शन में यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा का होना ही सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन कहा जाता है। तत्वार्थ शास्त्र का प्रथम सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। धर्म के 3 अंग अंततः वैदिक परंपरा में भी श्रद्धा या भक्ति ज्ञान और कर्म के नाम से स्वीकार किए गए हैं। मोक्ष मार्ग के प्रथम मार्ग के रूप में सम्यक दर्शन का वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ है ऐसी दृष्टि की प्राप्ति जिसके द्वारा शास्त्रोक्त तत्वों के स्वरूप में सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो। इस सच्ची धार्मिक दृष्टि का मूल है अपनी आत्मा का शरीर से पृथक सत्ता का भान। जब तक यह भान नहीं होता तब तक जीव मिथ्यात्वी है। इस मिथ्यात्व से छुटकर आत्मबोध रूप सम्यकत्व का प्रादुर्भाव माना गया है। जैन ग्रंथों में कभी तीव्र वेदना के कारण और कहीं धर्मोपदेश सुनकर अथवा धर्मोत्सव के दर्शन से सम्यकत्व जागृत करने धर्मोत्सव के दर्शन से सम्यकत्व जागृत होने की बात कही गई है। आत्मश्रद्धा रूप सम्यकत्व के उदय होने से मनुष्य के चरित्र में सद्भाव उत्पन्न होता है, जिसका मुख्य लक्षण है आस्तिवय। सम्यकत्व प्राप्त साधक इस लोक के परे भी आत्मा के शाश्वतपन में विश्वास करता है एवं परमात्मत्व की ओर बढ़ने में भरोसा रखता हुआ सच्चे देव शास्त्र व सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है। जैन धर्म में तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। यह श्रद्धा तीर्थंकरों एवं सिद्धों की शिक्षाओं के प्रति होनी चाहिए। जैन धर्म में तीर्थंकरों को सिद्ध, मुक्त एवं मोक्ष का वर्णन किया हुआ माना जाता है। अतएव जैन धर्म में तीर्थंकरों की शिक्षाओं को आंख मूंद कर स्वीकार करना चाहिए। सम्यक ज्ञान अंधविश्वास नहीं बल्कि जैन मत युक्त संगत है। सम्यक दर्शन न केवल जैन धर्म में ही है सर्वोत्कृष्ट बताया गया है बल्कि इसकी महत्ता मनुस्मृति में भी स्वीकार की गई है। सम्यक दर्शन संपन्नः कर्मभिर्नः बध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते। अतएव जैन साधक के लिए सम्यक श्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन आवश्यक है। 2. सम्यक ज्ञान या सम्यक ज्ञान सद्रूप या सद्रूप का शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान ही जैन धर्म में सम्यक ज्ञान कहा गया है। सम्यकत्व के द्वारा शुद्ध दृष्टि की श्रद्धा की साधना हो जाने पर मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए जैन धर्म में दूसरी साधना ज्ञानोपासना बताई गई है। सम्यक दर्शन द्वारा जिन जीवादि तत्वों में श्रद्धा उत्पन्न हुआ है उनकी विधिवत यथार्थ जानकारी प्राप्त करना ही जैन धर्म में सम्यक ज्ञान या सम्यक ज्ञान कहा गया है। सम्यक ज्ञान एवं दर्शन में सूक्ष्म विभेद यह है कि सम्यक दर्शन का क्षेत्र है अंतरंग और ज्ञान का क्षेत्र है बहिरंग। दर्शन आत्मा की सत्ता का भान कराता है और ज्ञान बाह्य पदार्थों का बोध कराता है। अतएव सम्यक ज्ञान से जीव और अजीव के संबंधित सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सम्यक ज्ञान में किसी प्रकार की संदिग्धता और दोष नहीं होता। मोक्ष के लिए जैन धर्म में कर्मों का नाश आवश्यक है। कर्मों के पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाने के बाद केवल ज्ञान ही प्राप्त होता है। अतएव जैन धर्म में मोक्ष के वरण के लिए सम्यक ज्ञान आवश्यक है। 3. सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र बाह्य जगत के विषयों के प्रति समसुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र कहा गया है। सम्यकत्व और ज्ञान की साधना के अतिरिक्त कर्मों के संवर या निर्जरा द्वारा मोक्ष सिद्धि के लिए सम्यक चरित्र की आवश्यकता जैन धर्म में अनिवार्य है। सम्यकता साधक को अधार्मिकता के क्षेत्र से निकालकर धार्मिक क्षेत्र में लाती है तथा साधक में एक नई चेतना उत्पन्न कराती है जिससे उसे भान होता है कि वह केवल शरीर के साथ मरने एवं जीने वाला नहीं है बल्कि वह एक अविनाशी तत्व है। इसके साथ ही सम्यकत्वी को अपने आसपास के जीवों में भी अपने समान आत्म तत्व के दर्शन होने लगते हैं जिससे उनके प्रति स्नेह कारुण्य व सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो जाती है और जिन वृत्तियों के कारण जीवों में संघर्ष पाया जाता है उनसे उसे विरक्ति होने लगती है। उसकी दृष्टि में अब एक ओर जीवन का अनुपम महात्म्य और दूसरी ओर जीवों में घोर दुख उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियां स्पष्टतः सम्मुख आ जाती हैं। इस नई दृष्टि के कारण उसकी अपनी वृत्ति में जो सम्यकत्व के चार लक्षण प्रथम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य प्रकट होने लगते हैं इससे बाधक के जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है और वह दुराचरण छोड़कर सदाचारी बन जाता है। इससे साधक आत्महीन के समान परहित करता है, अपने समान दूसरों की रक्षा करता है अर्थात सम्यक चरित्र से परम कल्याण की भावना साधक में आ जाती है। स्वहित के समान परहित समझना सम्यक चरित्र है। जैन धर्म में पंच महाव्रत एवं त्रिरत्न या रत्न त्रय के पालन से मोक्ष की प्राप्ति की बात कही गई है किंतु महावीर ने जैन गृहस्थों के लिए निम्न 5 व्रतों का प्रतिपादन किया। 1. अहिंसाणु व्रत 2. सत्याणु व्रत 3. अस्त्याणु व्रत 4. ब्रह्मचर्याणु व्रत 5. अपरिग्रहाणु व्रत ये 5 व्रत अणु व्रत के नाम से प्रख्यात हैं। इनके आधारभूत सिद्धांत पूर्वोल्लिखित महाव्रतों के समान ही हैं, केवल उनकी कठोरता एवं अतिवादिता ही इनमें नहीं है। यह समझकर ही भिक्षुओं की भांति गृहस्थों में अति कठोर व्रतों का पालन नहीं हो सकेगा। इन अणु व्रतों की कठोरता बहुत कम कर दी गई है। अणु व्रत के अतिरिक्त महावीर ने कहा कि शील व्रतों का पालन करना भी आवश्यक है। ये शील व्रत निम्न है: क शिक्षा व्रत, सामयिक प्रोषधोपवास, भोगोपभोग, परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग। ख गुण व्रत, तिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत। ऊपर वर्णित पांच अणु व्रतों के अतिरिक्त गृहस्थों के लिए जिन अन्य व्रतों के विधान बनाए गए वे शील व्रत कहलाएं, उनका वर्णन निम्नवत है: क शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत से गृहस्थ के धार्मिक जीवन का शिक्षण व अभ्यास होता है। इसके द्वारा जीवन का परिशोधन करके गृहस्थों का भरण भी धार्मिक रीति से करने का ज्ञान प्राप्त होता है। ये निम्न है: एक सामयिक। सामयिक का अर्थ है समता भाव का आह्वान। इनकी मन की साम्यावस्था यह है जिसमें हिंसा आदि समस्त पाप वृत्तियों का समन हो जाए। सामयिक की अपेक्षा समस्त व्रत एक ही कहे गए हैं, और इसी पर महावीर से पूर्व के तीर्थंकरों द्वारा जोर दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इस भावना के अभ्यास के लिए गृहस्थ को प्रतिदिन प्रभात, मध्यान्ह अथवा सायंकाल किसी भी समय कम से कम एक बार एकांत में शांत एवं शुद्ध वातावरण में बैठकर अपने मन को सांसारिक चिंतन से निवृत्त करके शुद्ध ध्यान अथवा धर्म चिंतन में लगाने का आदेश दिया गया है। इसे ही व्यवहार में जैन लोग संध्या कहते हैं। दो प्रोषधोपवास। जैन धर्म में खान पान या गृह व्यापार आदि का त्याग कर देव बंधन, पूजन तथा जप व शास्त्र स्वाध्याय आदि धार्मिक क्रियाओं में ही दिन प्रतीत करना प्रोषधोवास कहा गया है। जैन ग्रंथों में इसे गृहस्थों को यथाशक्ति प्रत्येक पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को करने के लिए आदेश दिया गया है, जिससे उनको भूख प्यास की वेदना पर विजय प्राप्त करने की क्षमता का विकास हो सके। तीन भोगोपभोग परिमाण। जैन धर्म में प्रतिदिन के आहार में से विशेष प्रकार के खट्टे मीठे रसों का फल, अन्नादि वस्तुओं का तथा वस्त्राभूषण, शयनासन व वाहनादि के उपभोग का त्याग करना व सीमा बांधना ही भोगोपभोग परिमाण व्रत कहा गया है। चार अतिथि संविभाग व्रत। यह शिक्षा व्रत का अंतिम व्रत है। इसके अंतर्गत अपने गृह पर आए हुए मुनि तथा साधु जनों की सत्कार पूर्वक औषधि एवं आहार देने का निर्देश दिया गया है। ख गुण व्रत। जैन धर्म में गुण व्रतों के अभ्यास से मूल व्रतों के गुणों में वृद्धि होती है। ये चार गुण व्रत निम्न हैं: एक दिग व्रत। जैन धर्म के चारों दिशाओं में गमन आगमन, आयात निर्यात आदि की सीमा नियंत्रित करने को दिग व्रत कहा गया है। दो देश व्रत। अल्पकाल में मर्यादा सहित दिग व्रत के भीतर समुद्र, नदी, पर्वत, पहाड़ी, ग्राम व दूरी प्रमाण के अनुसार सीमाएं बांधकर अपना व्यापार चलाना चाहिए। यह देश व्रत कहा गया है। तीन अनर्थ दंड। पापात्मक चिंतन व उपदेश तथा दूसरों को अस्त्र शस्त्र विष वंदन आदि ऐसी वस्तुओं का दान जिनका वह स्वयं उपभोग एवं उपयोग नहीं करना चाहता, उसे जैन अर्थ धर्म में अनर्थ दंड कहा गया है। इन तीनों गुण व्रतों के से साधक में तृष्णा व संचय की वृत्ति का नियंत्रण, इंद्रिय लिप्सा का दमन और दानशीलता की प्रवृत्ति जागृत होती है। समिति। इसके अतिरिक्त महावीर ने समिति को परिपालित करने का आदेश दिया जो निम्नवत है: एक इरिया समिति। इरिया समिति के अंतर्गत ऐसे मार्ग से चलने का आदेश दिया जाता है जहां कीट कीटाणुओं को पैर से कुचलकर मरने का भय न हो। इसके लिए अपने आगे पांच हाथ पृथ्वी देख देख कर चलने और अंधकार में गमन नहीं करने का आदेश दिया गया है। दो भाषा समिति। इसके अंतर्गत सदैव मधुर एवं सत्यवाणी बोलने का आदेश दिया गया है। निंदा व चापलूसी, हंसी या कटु वचन का परित्याग कर मुनि को सदैव संयत नपी तुली सत तुली सत्य प्रिय एवं कल्याणकारी वाणी के प्रयोग का आदेश दिया गया है। 3. ऐष्ठणा समिति भोजन द्वारा किसी भी प्रकार के कीट कीटाणुओं की हिंसा न करने का उपदेश दिया गया है। भिक्षा द्वारा केवल शुद्ध निरामिष आहार निर्लोभ भाव से ग्रहण करने का उपदेश दिया गया है। 4. आदान क्षेपक्षा समिति इसके अंतर्गत भिक्षुओं को आदेश दिया गया है कि वे अपने संपूर्ण सामग्री का उपभोग करते समय देख ले कि कहीं उनके द्वारा किसी कीट पतंग की हिंसा तो नहीं होती। ज्ञानोपाधि संयमोपाधि और शौचोपाधि रखने व ग्रहण करने में भी जीव रक्षा निमित्त सावधानी रखनी आदान निक्षेप समिति या आदान क्षेपक्षा समिति कहलाती है। 5. व्युत्सर्ग समिति व्युत्सर्ग समिति के अंतर्गत ऐसे स्थानों पर मल मूत्र त्यागने का निर्देश दिया गया है जहां किसी भी कीट कीटाणु की हिंसा न हो। इसे प्रतिस्थापन समिति भी कहा गया है। समिति के बाद जैन साधकों के लिए संयम पर बल दिया गया है। मन वचन क्रम के सम्यक पालन को संयम कहा गया है। परिशह समता भाव को भग्न करने वाली परिस्थितियों को जैन धर्म में परिशह कहा गया है तथा ऐसा होने पर उसे बनाए जाने को जप कहा गया है। इनकी संख्या में 23 हैं जो निम्न हैं: क्षुधा तृषा शीत उष्ण डास मच्छ। 6. नग्नता इससे क्लेश होना अनिवार्य है, इसे शांतिपूर्वक सहना चाहिए। 7. अरति एकांत में रहने भूख प्यास आदि की बाधाएं सहने तथा इंद्रिय विषयों के अभाव से उसे मुनि अवस्था से कभी अरुचि उत्पन्न हो सकती है, इसे जैन धर्म में अरति कहा गया है। 8. स्त्री परिशहग भिक्षा के समय नगर व ग्राम में परिभ्रमण करते समय गृहस्थों के घरों में युवती स्त्रियों का हाव भाव विलासों का दर्शन सामान्यतः हो सकता है। इससे भिक्षु के मन में चंचलता उत्पन्न हो सकती है, जिसे स्त्री परिशह कहा गया है। 9. चर्या परिशह वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में परिभ्रमण संबंधी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, जिसे चर्या परिशह कहा गया है। 10. निषाद्या परिशह रहने के लिए मुनि को श्मशान वन उजड़े घर पर्वत गुफाओं आदि का विधान किया गया है, जहां इन्हें अनेक बाधाएं सहनी पड़ती है, इसे निषाद्या परिशह कहा गया है तथा इस पर विजय को निषाद्या परिशह विजय कहा गया है। 11. शय्या परिशह मुनि को किंचित काल शयन के लिए खर विषम शिलातल आदि ही मिलेंगे, इसका क्लेश शय्या परिशह कहा गया है तथा इस पर जय शय्या परिशह कहा गया है और जय का अर्थ करना है। 12. आक्रोश परिशह विरोधी जन मुनि को बहुधा गाली गलौज भी कस देते हैं, जिसे जैन धर्म में आक्रोश परिशह कहा गया है तथा इस पर जय को आक्रोश परिशह जय कहा गया है। 13. वध परिशह यदि विरोधी मारपीट कर बैठे तो उसे वध परिशह कहा जाता है तथा इस पर जय को जय वध परिशह कहा गया है। जय का अर्थ है सहन करना। 14. औषध परिशह मुनि को अपने आहार वस्त्र औषध आदि के लिए गृहस्थों से याचना करनी पड़ती है, जिसे औषध परिशह कहा गया है। 15. याचना परिशह इस कार्य में अपने में दीनता भाव आने देने की याचना को याचना परिशह कहा गया है तथा इस कार्य में दीनता भाव न आने देने को याचना परिशह जय कहा गया है। 16. अलाभ विजय याचित वस्तु का लाभ न होने पर रुष्ट न होकर अलाभ से उसे अपनी तपस्या की वृद्धि में लाभ ही हुआ, ऐसा समझकर संतोष भाव रखने को अलाभ परिशह कहा जाता है। 17. रोग विजय यदि शरीर किसी रोग व्याधि व पीड़ा के वशीभूत हो जाए तो उसे शांतिपूर्वक सहने का नाम रोग विजय है। 18. तृण स्पर्श विजय चर्याशया व निषद्यादि के समय जो तृण कांटा कंटक आदि चुभने की प्रेरणा हो सकती है, उसे सहना तृण स्पर्श विजय है। 19 मल परिशह विजय। साधु को अपने शरीर से मोह छोड़ने के लिए स्नान न करने, दंतादि अंग प्रत्यंगों को साफ न करने तथा शरीर का अन्य किसी प्रकार भी संस्कार न करने के कारण उत्पन्न होने वाली मलिनता से घृणा व खेद का भाव उत्पन्न न होने देने को मल परिशह विजय कहा गया है। 20 सत्कार पुरस्कार विजय। सामान्यतया व्यक्ति को विशेष सत्कार पुरस्कार मिलने से हर्ष और न मिलने से रोष व खेद का भाव उत्पन्न होता है, किंतु मुनि को उक्त दोनों अवस्थाओं में रोष तोष की भावना से विचलित नहीं होना ही सत्कार पुरस्कार विजय है। 21 प्रज्ञा विजय। विशेष ज्ञान के मत से मुक्त रहने को जैन धर्म में प्रज्ञा विजय कहा गया है। 22 अज्ञान विजय। ज्ञान न होने पर उद्विग्न न होना जैन धर्म में अज्ञान विजय कहा गया है। 23 अदर्शन विजय। दीर्घकालीन तपस्या के पश्चात अवधि या मन पर्याय ज्ञानादि की प्राप्ति रूप रिद्धि सिद्धि उपलब्ध न होने पर मुनि की श्रद्धा विचलित हो सकती है तथा ऐसी भावना उत्पन्न हो सकती है कि ये सब सिद्धियां प्राप्य हैं या नहीं, केवल ज्ञानी ऋषि मुनि तीर्थंकर आदि हुए हैं या नहीं, या यह सब तपस्या निरर्थक ही है, ऐसी भावना उत्पन्न होना जैन धर्म में अदर्शन कहा गया है तथा इसकी विजय को अदर्शन विजय कहा गया है। धर्म के लक्षण। इसके अलावा जैन धर्म में महावीर स्वामी ने धर्म के निम्न लक्षण बताए हैं। 1 उत्तम क्षमा। क्रोधोत्पादक गाली गलौज मारपीट अपमान आदि परिस्थितियों में भी मन को कलुषित न होने देना उत्तम क्षमा कहा गया है। 2 उत्तम मार्दव। कुल जाति रूप ज्ञान तप वैभव प्रभुत्व एवं शील आदि संबंधी अभिमान करना मत कहलाता है। इस मान कषाय को जीत कर मन में सदैव मृदुता भाव रखना मार्दव धर्म कहा गया है। 3 आर्जव धर्म। मन में कुछ और सोचना, वचन से कुछ और कहना तथा शरीर से करना कुछ और कुटिलता या मायाचारी कहलाती है। इस माया को जीत कर मन वचन काय की क्रिया में एक रूपता ऋजुता रखना आर्जव धर्म कहा गया है। 4 शौच धर्म। मन को मलिन बनाने वाली जितनी अनिष्टकारी दुर्भावनाएं हैं उनमें लोभ सबसे प्रबल अनिष्टकारी है। इस लोभ के कषाय को जीतकर मन को पवित्र बनाना शौच धर्म है। 5 सत्य धर्म। असत्य वचन की प्रवृत्ति को रोककर सदैव यथार्थ हित मित प्रिय वचन बोलना सत्य धर्म है। 6 संयम धर्म। इंद्रियों के विषयों की ओर मन की प्रवृत्ति को रोककर उसे सत्य प्रवृत्तियों में लगाना संयम धर्म है। 7 तप धर्म। विषयों व कषायों का निग्रह करके 12 प्रकार के तप में चित्त लगाना तप धर्म कहा गया है। 8 त्याग धर्म। बिना किसी प्रतिकार व स्वार्थ भावना के दूसरे के हित व कल्याण के लिए विद्या आदि का दान देना जैन धर्म में त्याग धर्म कहा गया है। 9 अकिंचन धर्म। घर द्वार धन दौलत बंधु बांधव शत्रु मित्र सबसे ममत्व छोड़ना कि ये मेरे नहीं हैं, यहाँ तक कि शरीर भी सदा मेरे साथ रहने वाला नहीं है, ऐसी अनासक्ति बुद्धि उत्पन्न करना अकिंचन धर्म कहा गया है। 10 ब्रह्मचर्य धर्म। रोगोत्पादक परिस्थितियों में भी मन को काम वेदना से विचलित न होने देना व उसे आत्मचिंतन में लगाए रहना जैन धर्म में ब्रह्मचर्य धर्म कहा गया है। पाप से बचने के निर्देश। जैन धर्म में यह स्वीकार किया गया है कि इन धर्मों के द्वारा मन के कषायों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, किंतु इसके बावजूद भी आत्मा में पाप की भावनाओं का आ जाना संभव है, जिसके लिए जैन धर्म में पाप से बचने का 18 निर्देश दिया गया है। यह 18 पाप निम्नवत हैं: 1 प्राणातिपात हिंसा, 2 झूठ, 3 चोरी, 4 मैथुन, 5 द्रव्य मूर्छा परिग्रह, 6 क्रोध, 7 मान, 8 माया, 9 लोभ, 10 राग, 11 द्वेष, 12 कलह, 13 दोषारोपण, 14 चुगली, 15 असंयम में रति और संयम में अरति असुख, 16 पर परिवाद निंदा, 17 माया मृषा कपट मिथ्या, 18 मिथ्या दर्शन रूपी शल्य। आवश्यक सूत्र में कहा गया है कि इन पापों के भार से ही जीव भारी हो जाता है तथा वह नरक की ओर गिरता है। जब इन पापों का मूलोच्छेद हो जाता है तो जीव हल्का हो जाता है और गगन तल की ओर ऊपर उठता है। इसे जैन धर्म में निर्वाण मार्ग पर अग्रसर होना कहा गया है। तब जैन धर्म में व्रत आदि की साधना को कर्माश्रव रूपी संबंध में बंधे हुए कर्मों के क्षय को निर्जरा करने वाला कहा गया है, किंतु कर्म निर्जरा के लिए जैन धर्म में विशेषतः तप को उपयोगी साधना माना गया है, जिसके दो प्रमुख भेद है, अ बाह्य तप, ब आभ्यंतर तप। अ बाह्य तप दो अनशन अवम मौदार्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग्य विविक्त सय्यासन काया क्लेश। एक अनशन, जैन धर्म में सब प्रकार के आहार का परित्याग अनशन तप कहा गया है। दो अवमौदार्य, अल्प आहार मात्र ग्रहण करना जैन धर्म में अवमौदार्य या उनोदर तप कहा गया है। तीन वृत्ति परिसंख्यान, आहार संबंधी परिस्थितियों पर नियंत्रण करना जैन धर्म में वृत्ति परिसंख्यान तप कहा गया है। चार रस परित्याग, घृतादि विशेष पौष्टिक एवं विकारी वस्तुओं का त्याग तथा मिष्ठान आदि रसों का नियमन करना जैन धर्म में रस त्याग कहा गया है। पाँच विविक्त शय्यासन, शून्य गृह आदि एकांत स्थान में वास करना जैन धर्म में विविक्त शय्यासन कहा गया है। छह काया क्लेश तप, धूप शीत वर्षा आदि बाधाओं को विशेष रूप से सहने का एवं आसन विशेष पर लंबे समय तक स्थिर रहने आदि का अभ्यास करना काया क्लेश तप कहा गया है। व आभ्यंतर तप, एक प्रायश्चित, प्रमादवश उत्पन्न हुए दोषों के परिहार के लिए आलोचना प्रतिक्रमण आदि चित्त शोधक क्रियाओं में प्रवृत्त होना ही प्रायश्चित तप कहा गया है। दो विनय तप, ज्ञान दर्शन चरित्र व उपचार की साधना में विशेष रूप से प्रवृत्त होना विनय तप है। तीन वैयावृत्य तप, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शिक्षारत रोगी गण कुल संघ साधु तथा लोक सम्मत अन्य योग्य जनों की पीड़ा बाधाओं को दूर करने के लिए सेवा में प्रवृत्त होना वैयावृत्य तप है। चार स्वाध्याय तप, धर्मशास्त्रों का अध्ययन शंकाओं पर पूछना अनुचिंतन बार बार आवृत्ति व धर्मोपदेश आदि स्वाध्याय तप कहा गया है। पाँच व्युत्सर्ग तप, गृह धन धान्य आदि बाह्योपाधियों तथा क्रोधादि अंतरंगोपाधियों का त्याग करना जैन धर्म में व्युत्सर्ग तप कहा गया है। छह ध्यान, इंद्रियों तथा रागद्वेष भावों को निरोध करके उसे धार्मिक चिंतन में लगाना धर्म ध्यान है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर द्वारा प्रतिपादित ये शिक्षाएं हैं, जिनका पालन करके साधक मोक्ष को वरण कर सकता है। जैन धर्म के संप्रदाय दिगंबर तथा श्वेतांबर, जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि महावीर के निर्वाण से 62 वर्ष पश्चात जम्बू स्वामी का नायकत्व समाप्त होते ही संघ भेद आरंभ हो गया। महावीर के निर्वाण के पश्चात जैन संघ के नायकत्व का भार क्रमशः उनके प्रमुख तीन शिष्यों गौतम सुधर्म और जम्बू पर पड़ा। इनका काल क्रमशः 12 व 38 वर्ष 62 वर्ष माना गया है। अब तक आचार्य परंपरा में कोई भेद नहीं पाया जाता था, किंतु इनके पश्चात कालीन आचार्य परंपराएं दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदायों में पृथक पृथक पाई जाती हैं, जिससे प्रतीत होता है कि संप्रदाय भेद के बीच यहीं से प्रारंभ हो गए थे। कारण, संप्रदाय भेद के कारण की विवेचना करने पर हम पाते हैं कि इसकी एक झलक उत्तराध्ययन सूत्र के केशी गौतम संवाद नामक 23वें अध्ययन में मिलती है। इसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय भगवान महावीर ने अपना अचेलक या निर्ग्रंथ संप्रदाय स्थापित किया था, उस समय पार्श्वनाथ का प्राचीन संप्रदाय प्रचलित था। महावीर के संप्रदाय के अधिनायक गौतम के समकालीन पार्श्व संप्रदाय के नायक केशी कुमार थे। इन दोनों गणधरों की भेंट श्रावस्तीपुरी में हुई और उन दोनों में विचार हुआ कि क्या कारण है कि यह संप्रदाय एक होने पर भी दोनों नामों से जाना जाता है, पार्श्व संप्रदाय चाउजाम धर्म तथा वर्धमान संप्रदाय पंचसिक्खीय। पार्श्व का धर्म संतरोत्तर तथा वर्धमान का अचेलक धर्म कहलाता है। इस प्रकार एक धर्म के प्रवृत्त होने पर भी इन दोनों में अलग अलग विशेषताओं का कारण क्या है? केशी कुमार के इस संबंध में प्रश्न करने पर गौतम गणधर ने बताया कि पूर्व काल में मनुष्य सरल किंतु जड़ होते थे, पश्चात काल में वक्र और जड़ दोनों होते थे, किंतु मध्य काल के लोग सरल और समझदार थे, अतएव पुरातन लोगों के लिए धर्म का शोध कठिन था, पश्चातकालीन लोगों को उसका अनुपालन कठिन था, किंतु मध्यकाल के लोगों के लिए धर्म संशोधन और पालन में सरल प्रतीत हुआ। इसी कारण एक और आदि व अंतिम तीर्थंकरों ने पंचवत रूप तथा मध्य के तीर्थंकरों ने उसे चातुर्याम रूप से स्थापित किया। उसी प्रकार उन्होंने बतलाया कि अचेलक या संस्तर युक्त वेश तो केवल लोगों में पहचान आदि के लिए निर्धारित किए जाते हैं। यथार्थतः मोक्ष के कारण भूत तो ज्ञान दर्शन और चरित्र हैं। गौतम और केशी के बीच इस वार्तालाप का यह परिणाम हुआ कि केशी ने महावीर का पंच महाव्रत धर्म स्वीकार कर लिया, किंतु उनके बीच वेश के संबंध में क्या निर्णय हुआ यह स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर हीरालाल जैन का अनुमान है कि इस संबंध में अचेलकत्व और इच्छानुसार ग्रहण की बात स्वीकार कर ली गई, जिसके अनुसार हमें स्थवीर कल्प और जीन कल्प के उल्लेख मिलते हैं। स्थवीर कल्प पार्श्व परंपरा का अल्प वस्त्र धारण करने वाला रूप मान लिया गया और जिसे कल्प में महावीर की परंपरा का सर्वथा अचेलक रूप माना गया, किंतु एक संप्रदाय में ऐसा द्विविध कल्प बहुत समय तक नहीं चल सका। अब यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि यदि वस्त्र धारण करके ही महाव्रती बना जा सकता है और निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है तो अचेलकता की आवश्यकता क्यों है? इस विरोधी विचार के संघर्ष के फलस्वरूप महावीर के निर्वाण के 62 वर्ष पश्चात जम्बू स्वामी का नायकत्व समाप्त होते ही संघ में भेद आरंभ हो गया। जैन धर्म के संप्रदाय में विभेद होने के विषय में स्थवीरावली में से भी प्रकाश पड़ता है। इससे ज्ञात होता है कि भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की यह शिष्य परंपरा 1317 ईस्वी पूर्व तक चली। जैन संघ के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने वाले महावीर स्वामी के शिष्यों में स्थूलभद्र के गुरु भद्रबाहु मुख्य थे। 317 ईसा पूर्व में आचार्य भद्रबाहु ने संघ के कार्यों को अपने हाथों में ले लिया और 7 वर्षों तक संघ का संचालन किया तथा उसके बाद संघ संचालन का कार्य अपने शिष्य स्थूलभद्र पर सौंप कर स्वयं दक्षिण भ्रमण के लिए चले गए। भद्रबाहु जिस समय दक्षिण भ्रमण को गए हुए थे उसी समय स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में जैन साधुओं की एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में जैनों के अंग ग्रंथों का नए सिरे से संग्रह करने का आयोजन किया गया। भद्रबाहु जब यात्रा से वापस आए तो सभा में पारित यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए उनके सामने रखा गया। उन्होंने इस पर स्वीकृति देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। आचार्य भद्रबाहु की अनुपस्थिति में एक घटना और घटी। आचार्य स्थूलभद्र की आज्ञा से जैन साधुओं ने वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था। भद्रबाहु को यह अच्छा न लगा। अंत में यह विवाद उग्र रूप धारण कर लिया। भद्रबाहु अपने कुछ विश्वास पात्र शिष्यों के साथ लेकर दूसरे स्थान पर चले गए और अपने पुराने सिद्धांत पर ही अड़े रहे। इस प्रकार जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, दिगंबर तथा श्वेतांबर। जैन धर्म के 2 संप्रदाय वेश यानी वस्त्र ग्रहण की बात को लेकर है, किंतु सिद्धांतगत मतभेद के कारण जैन संप्रदाय में 7 निन्हों हैं। डॉक्टर जैन के अनुसार महावीर निर्माण के 609 वर्ष पश्चात दिगंबर संघ स्वरूपित हुआ, किंतु विक्रमी संवत के 136 वर्ष के उपरांत श्वेतांबर संघ भी प्रचलन में आया। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय की उत्पत्ति के काल में केवल 3 वर्षों का अंतर ज्ञात होता है। अतः डॉक्टर मेहता आदि विद्वानों ने यह अनुभव किया है कि दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों का स्पष्ट रूप से भेद महावीर निर्वाण से 600 वर्ष पश्चात हुआ। दिगंबर तथा श्वेतांबर संप्रदाय के विषय में उपलब्ध साहित्यिक साक्ष्यों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों संप्रदायों के बीच विभेद का कोई सैद्धांतिक कारण नहीं है, बल्कि इनके बीच विभेद का मूलभूत कारण वेश यानी अचेलकत्व एवं अल्पवस्त्रत्व को इच्छानुसार ग्रहण करने का विवाद था। इन दोनों संप्रदायों के बीच तात्विक दृष्टिकोण से कोई विभेद नहीं है। इनके सूक्ष्म निरीक्षण से ज्ञात होता है कि दिगंबर संप्रदाय में धार्मिक नियमों की उग्रता है तो श्वेतांबर संप्रदाय में मानवीय कमजोरियों को ध्यान में रखकर कुछ अंशों के कठोर नियमों में शिथिलता ला दी गई है। दिगंबरों का कहना है कि केवल ही भोजन नहीं करता न स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जिसकी पुष्टि सर्वदर्शन संग्रह के निम्न श्लोक से होती है। भुंक्ते न केवली न स्त्री मोक्षम मेति दिगंबरः प्राहुरेषामयं भेदो महान श्वेतांबरैः सह। दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय में अंतर ये निम्न है। 1. दिगंबर संप्रदाय में अचेलकत्व पर पूर्ण बल दिया जाता है तो दूसरी ओर श्वेतांबर संप्रदाय में श्वेत वस्त्र धारण करने पर। दिगंबर संप्रदाय के आचार्य कुंद का स्पष्ट कथन है कि यदि तीर्थंकर वस्त्रधारी है तो उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। नग्नता यानी अचेलकत्व ही मोक्ष का मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। इसकी पुष्टि में निम्न श्लोक है। रवि सिद्धई वत्थ धरो जिड़ सासड़े जय विहोई तित्थ परो पाग्गो विमोक्षमग्गो शेषा उमग गया सब्वई। इस तरह दिगंबरों में अचेलकत्व पर विशेष बल दिया गया है। इस पर श्वेतांबरों का कथन है कि यदि वस्त्र पहन कर भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है तो अचेलकत्व की क्या आवश्यकता है। 2. दिगंबर संप्रदाय के आचार्यों का कथन है कि स्त्री को तीर्थंकर पद एवं मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, अतएव 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को भी कोवे पुरुष ही मानते हैं। इसके विपरीत श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य 19वें तीर्थंकर मल्ली को स्त्री मानते हैं तथा उनका विश्वास है कि स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। 3. दिगंबर संप्रदाय शूद्रों को भी मोक्ष का अधिकारी नहीं मानता किंतु श्वेतांबर शूद्रों को मोक्ष का अधिकारी मानता है। 8. दिगंबर संप्रदाय के लोग स्थूल भद्र की जैन सभा को स्वीकार नहीं करते हैं किंतु श्वेतांबर इस जैन सभा में विश्वास करता है। 5. दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को विवाहित नहीं मानता और इसके विपरीत श्वेतांबर संप्रदाय विवाहित मानता है तथा यह भी स्वीकार करता है कि इन्हें एक पुत्री भी थी। 6. दिगंबर संप्रदाय में तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को पूर्ण अचेलकत्व नग्न के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसके विपरीत श्वेतांबर संप्रदाय में प्रतिमाओं को परिधानों तथा आभूषणों से सुसज्जित दिखाया गया है। इनके परिधान के लिए श्वेत वस्त्र का ही प्रयोग किया गया है। 7. दिगंबरों की मान्यता के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्त करते समय साधु को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु इसके विपरीत श्वेतांबरों के अनुसार इस समय भी भोजन ग्रहण किया जा सकता है। 8. दिगंबर साधकों एवं साधुओं के लिए एकांतवास आवश्यक है, परंतु श्वेतांबर के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। 9. दिगंबर संप्रदाय के अनुसार भिक्षुओं को किसी प्रकार का उपकरण नहीं रखना चाहिए, किंतु श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार प्रत्येक भिक्षु को पात्र, पात्रबंध, पात्र स्थापन, पात्र प्रमार्जिनिका, पटल, रजस्त्राण, गुच्छक, 2 चादरें, ऊनी वस्त्र, रजोहरण, मुख वस्त्र, मात्रक तथा चोलपट्टक, इन 14 उपकरणों को अपने पास रखना चाहिए। 10. दिगंबर संप्रदाय शूद्र के घर से आहार लेने का आदेश नहीं देता, किंतु श्वेतांबर संप्रदाय इसे लेने की अनुमति देता है। 11. श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर के निर्माण से लगभग 1000 वर्ष पश्चात साधुओं की स्मृति के आधार पर 11 अंगों का संकलन करके उन्हें सुव्यवस्थित किया गया था, किंतु दिगंबर संप्रदाय इस बात को स्वीकार नहीं करता। 12. दिगंबर संप्रदाय चक्रवर्ती भारत के कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति पर विश्वास नहीं करता, किंतु श्वेतांबर संप्रदाय इस पर विश्वास करता है। 13. तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता उमा स्वामी नाम के जैन विद्वान को दिगंबर लोग उमा स्वाति कहते थे और श्वेतांबर उन्हें उमा स्वामी कहते थे। 14. दिगंबरों तथा कतिपय श्वेतांबरों का कथन है कि केवलियों में ज्ञान और दर्शन ये दोनों गुण एक ही साथ अभिव्यक्त होते हैं, किंतु श्वेतांबरों के मत में ये क्रमशः उत्पन्न होते हैं। 15. दिगंबरों के मतानुयायी यह विश्वास करते हैं कि राजा विक्रमादित्य 187 ईस्वी के बाद में जैन धर्म में दीक्षित हुए, किंतु श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार उनकी दीक्षा 57 ईसा पूर्व में हुई थी। उनको जैन धर्म में सिद्धसेन दिवाकर ने दीक्षित किया था। 16. दिगंबर संप्रदाय के अनुयायियों का कथन है कि पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र ने जो सभा की थी और उसमें जिन जैन धर्म ग्रंथों का संग्रह किया था वे सब किसी महत्व के नहीं हैं, क्योंकि इसके बहुत पूर्व ही जैन धार्मिक ग्रंथों का अर्थात पूर्वों और अंगों का नाश हो चुका था। श्वेतांबर इसे स्वीकार नहीं करते। 17. दिगंबरों तथा श्वेतांबरों का साहित्य एक ही है, पर इनके ग्रंथों के नामों में भिन्नता है। 18. श्वेतांबरों के आचार्य भद्रबाहु प्रथम, उमा स्वाति, कुंद कुंदाचार्य, सिद्धसेन दिवाकर, सिद्धसेन गढ़ी, हरिभद्र सूरी, मल्लिशेषेण सूरी आदि हैं, तथा दिगंबर संप्रदाय के आचार्य ज्ञानचंद्र गुणरत्न सूरी, यशो विजय गढ़ी, समंत भद्र, विद्यानंद, माणिक्य नंदीन, प्रभाचंद, अमृतचंद सूरी, देवसेन भट्टारक, लघु समंत भद्र, अनंत वीर्य आदि हैं। वस्तुतः दिगंबर तथा श्वेतांबर संप्रदायों में ये अंतर इन दोनों संप्रदायों में मुख्यतः गौण बातों को लेकर ही मतभेद को उजागर करते हैं। तात्विक दृष्टिकोण से इन दोनों संप्रदायों में कोई विभेदन नहीं है।